أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آخرت کے اوپر دلائل کے بارے میں آیات. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو ان کے درمیان ہے کھیلنے کے لیے, کھیل تماشے کے طور پہ کھیلنے والے ہو کر. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو آسمان کی پیدائش, آسمان اللہ نے بنائے, زمین بنائی, جو ان کے درمیان جو کچھ بنایا, اگر تو قیامت نہیں آنی, قیامت کا کوئی وجود نہیں ہے, تو کیا یہ اللہ تعالیٰ نے کھیلنے کے لیے بنائے؟ ذرا غور کرو, یہ کیا ایسے ہی کھیل تماشا ہے؟ یعنی دیکھیں نا آپ, آسمان اور زمین کو اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے ایک تخلیق کی, آسمان کتنا بڑا ہے, زمین, اس کے اندر کتنی چیزیں ہیں, ان کے درمیان یہ سب چیزیں. تھوڑا غور کر کے دیکھو, کیا یہ ایسے ہی بس بنا دی ہیں, ایسے ہی ہیپ ہیزرڈ بیٹھے بیٹھے, نعوذ باللہ, کوئی اللہ تعالیٰ کوئی شوق ہو رہا تھا تو اس نے ایسے بنا دیا, چلو ایک آسمان بنا دیا جائے, چلو ایک زمین بنا دی جائے, چلو. اگر یہ ایسے ہی ہیپ ہیزرڈ اور کھیلنے کے لیے بنائی ہوتی تو کیا یہ نظام ایسے اتنا ایکوریٹلی چل رہا ہوتا؟ کیا سورج اسی طرح اتنے ہی فاصلے پہ ہوتا کہ یہ زندگی چل سکتی؟ اتنا ایکوریٹ, حالانکہ ذرا دور ہوتا تو ٹھٹر کے مر جاتے, ذرا قریب ہوتا تو گرمی سے ختم ہو جاتے. کیا اسی طرح سارے ستارے, سیارے اتنے ڈسپلن کے ساتھ جو چل رہے ہیں, کیا ایسے ہی ہو رہا ہوتا؟ دیکھیں جو چیزیں ہیپ ہیزرڈ بنائی ہوں, آپ مثال کے طور پہ کوئی چیز, کوئی انسان کوئی مشین بناتا ہے تو کوئی پرزہ ادھر سے لگا دیا, کوئی ادھر سے لگا دیا, کوئی ایسے جوڑ توڑ کے ایک چیز بنا دی اور کہہ دیا یہ گاڑی بن گئی, تو کیا وہ بن جائے؟ نہیں. کتنی پلاننگ کرتے ہیں, کتنی انجینئرنگ اس میں یوز ہوتی, کتنا آرکیٹیکچر یوز ہوتا ہے, کتنا دماغ لگتا ہے, پھر جا کے ایک چیز سامنے آتی ہے, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کی یہ کائنات کیا کسی بغیر آرگنائزیشن کے, بغیر کسی ڈیزائننگ کے, بغیر کسی ڈسپلن کے ایسے ہی بنا دی؟ کیونکہ کھیل تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا, کھیل میں تو کوئی چیز بھی اس طرح کی کنسٹرکٹیو یا بامقصد نہیں ہوتی, کھیل تو ایسے ہی ہوتا ہے, بس آئے کھیلا اور ختم کر دیا. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کھیل کوئی بامقصد چیز ہو کہ بھائی کھیل کے اندر انسان چاند پہ پہنچ جائے, کھیل کے اندر گاڑی بنا لے, کھیل میں مشین بنا لے. تو اگر یہ اس کا کوئی مقصد نہیں تھا, یہ کھیل تماشا تھا, تو یہ اتنا آرگنائز تو نہ چلتا. اور کیسے, دیکھو جب ہر چیز یہاں پہ ایک مقصد رکھتی ہے, دیکھیں کائنات کی ہر چیز پہ اگر آپ غور کریں اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. سورج ہے تو آپ کہتے ہیں ہاں بھائی سورج اس لیے ہے کہ ہمیں روشنی دے, سورج اس لیے ہے کہ ہیٹ دے, سورج اس لیے ہے کہ دن ہو, رات اس لیے ہے کہ ہم آرام کریں, مثال کے طور پہ یہ چوپائے جانور مویشی اس لیے ہیں کہ ہم ان کے اوپر سواری کریں, ان کا دودھ پئیں, ان کا گوشت کھائیں, اور چیزوں کا ہر ایک کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. تو جب سب چیزوں کا مقصد ہے تو پھر انسان کے دنیا میں آنے کا بھی تو کوئی مقصد ہوگا. آسمان کا کوئی مقصد ہے, اس کو چھت بنایا اللہ نے, زمین کا کوئی مقصد ہے کہ اس کے اوپر رہنے کو کہ کمفرٹیبلی انسان رہ سکے, پہاڑوں کا کوئی مقصد ہے کہ زمین ہلے نہیں. تو سوچتے نہیں ہو کہ تمہارا بھی تو کوئی مقصد ہوگا, کوئی تو پرپز ہوگا نا تمہارا, یا ایسے ہی بے مقصد بن گئے؟ جب ہر چیز کا کوئی مقصد ہے, حتیٰ کہ اتنے سی چونٹی کا بھی کوئی مقصد ہے, تو پھر جو انسان جس کا اس دنیا میں سینٹرل جو ایک وجود ہے, اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوگا. کیا وہ ایسے ہی کھیل تماشا ہے بس؟ جبکہ انسان کو تو سب سے زیادہ اللہ نے برین دیا, اس کو سب سے زیادہ شعور ہے, تمیز ہے, نیکی بدی کی, ہر چیز کی, تو کیا اس کا کوئی مقصد نہیں ہوگا؟ کیا اس کا کام بس یہی ہے کہ آئے دنیا میں, کھائے پیے, عیش کرے, بزنس بڑھائے, دو چار بچے پیدا کرے, پھر اس کے بعد گھر بنائے, شادی وادی کرے, بس اسی طرح فن کرتا ہوا دنیا سے چلا جائے؟ بارشیں ایسے ہی ہوتی ہیں, ان کو کوئی ایسا مقصد نہیں ہے, بس آئے بادل آئے, بارش ہو گئی, نہیں ہوئی تو نہیں ہوئی, بس اسی طرح وہ چل رہا ہے. سورج مرضی سے نکلے, کسی دن نکلے, کسی دن نہ نکلے, بس. نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت اٹھتے تھے تو کیا فرماتے تھے؟ اٹھتے ہی سورہ آل عمران کی جو آخری آیات پڑھتے تھے, ربنا ما خلقت هذا باطلا, ऐ अल्लाह तूने इनमें से किसी चीज को बेकार नहीं पैदा किया, तो ये तो सब कुछ बेकार है अगर इसका कोई मकसद ही नहीं है। देखें बेमकसद की चीज तो खेल हुई ना, तो अगर इसका कोई मकसद नहीं, जमीन कोई वजह से नहीं अल्लाह ने बिछाई, आसमान का कोई मकसद नहीं, सूरज चांद का कोई मकसद नहीं, इंसान का कोई मकसद नहीं, तो ये तो सब खेल है फिर। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हम खेलने वाले तो नहीं, हमने ये खेल के लिए तो नहीं बनाया कि अल्लाह ताला का एक दिन दिल चाहा तो उसने खेलना शुरू कर दिया। तो ये उसने खेल तमाशे के तौर पे नहीं बनाई है दुनिया। वमा खलकनाहुमा, और नहीं पैदा किया हमने इन दोनों को, किन दोनों को, आसमानों और जमीन की बात हो रही है। अब उसका पर्पस बताया, इल्ला बिल हक, मगर हक के साथ। हक क्या चीज होती है? अगर हक का माना देखे तो हक उस चीज को कहते हैं जिसका कोई मकसद होता है। हक बा मकसद चीज, बे मकसद चीज तो बातें है ना, बे मकसद चीज तो कुछ भी नहीं है। हक वो चीज है जिसको कोई, जिसका कोई पर्पस हो, जिसमें कोई विजडम हो, कोई हिकमत हो उसमें, वो हक है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जो आसमान और जमीन अल्लाह ने बनाए हैं ये सच्चाई पे एक तो बेस्ड है, हक सच्चाई को भी कहते हैं, और इनका कोई पर्पस है। वलाकिन अक्सरहुम ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग इल्म ही नहीं रखते, उनको ये पता ही नहीं है कि इनका कोई मकसद है, इनके पीछे कोई वजह है, इनको पैदा करने का कोई अल्लाह ताला ने इसके पीछे कोई रीजन रखा हुआ है, इस चीज पे गौर ही नहीं करते। और वो रीजन क्या है यही देखना, सबसे पहले इंसान को मकसद तो पता चले ना, किस मकसद के लिए बनाया। कभी इंसान सोचे तो सही बैठ के, मैं क्यों आई हूं दुनिया में, बस इसी तरह बस ऐसे ही आई हूं और ऐसे ही चली जाऊंगी, बस यहां पे आना जाना चूंकि लगा हुआ है, लोग पैदा होते मर जाते तो बस इसी तरह मैं भी हूं। तो क्या वाकई यही मकसद है इंसान का और जमीनों और आसमानों का और ये चांद सितारों का, बस ऐसे ही, कोई वजह ही नहीं, कोई बस ये हमें सर्व करने के लिए। बेशक अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में फरमाया ये सब चीजें जो अल्लाह ने जमीन पर बनाई हैं वो इंसान के लिए बनाई हैं, सब चीजें इंसान के लिए बनाई, याद रखें। और इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आप अगर रिसर्च करें तो आपको पता चलेगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर चीज इंसान को सर्व कर रही है। इवन ये कीड़े हैं ना, कई कीड़ों का पता चला कि वो ऐसे हैं कि वो जमीन के नीचे रहते हैं, वो जमीन को जरखेज करते हैं। जब वो जमीन को जरखेज करते हैं तो फिर ये जो पौधे हैं वो उगने आसान होते हैं। जमीन के अंदर वो घूमते हैं, उसकी वजह से एयर की वहां पे मतलब एयर जा सकती है। यानी हर चीज को अगर आप देखें तो वो इंसान की गिर्द ही घूम रही है। तो क्या इंसान को अल्लाह ने ऐसे ही बेकार बना दिया होगा? इतनी जबरदस्त एक चीज बनाई जिसका इतना जबरदस्त ब्रेन है, वो ऐसे ही है क्या? ये तो नहीं हो सकता। यहीं से अल्लाह ताला ने ये सोच दिया है कि तुम सोचो तो सही, कि खुद तुम्हारा अपना अंदर बोलेगा। एक अकल अल्लाह ताला ने दिया ना इंसान के अंदर, आप अपनी सोच से बताएं। आपके अपने अंदर चाहे कुरान नहीं भी पढ़ो, हर इंसान के अंदर नेकी और बदी का एक शऊर है। हर एक इंसान चाहे वो काफिर भी है, वो भी कहता है वाकई जो इंसान अच्छा करे उसको उसके रिवॉर्ड मिलना चाहिए और जो बुरा करे उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। ऐसा ही है ना, इसी वजह से दुनिया के कानून भी बनाए जाते हैं। लेकिन हम दुनिया में देखते हैं यहां पे कुछ मसला उल्टा ही नजर आता है। यहाँ पे तो जो इंसान हराम खाता है वो ऐश कर रहा है, जो लूट खसूट रहा है, चोर बाजारियां कर रहा है, लोगों के साथ जुल्म ज्यादती कर रहा है, उनको धोखे दे रहा है, वो बड़े मजे कर रहा है, फल फूल रहा है और उसकी बड़ी इज्जत हो रही है। और जो बेचारा सच बोलना चाहता है, ईमानदारी से चलना चाहता है, उसके लिए मुसीबत हो गई है, उसका हाल बुरा है, उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं, उसके लिए जीना मुश्किल हो रहा है। मुजरिम जो हैं वो दंदनाते बाहर फिरते रहते हैं और जो बेचारे वो इज्जत वाले लोग हैं, इज्जतदार लोग हैं, वो घर के अंदर दुबक के बैठे रहते हैं। भाई अपनी इज्जत सलामत रखने के लिए यही सही है। अव्वल तो मुजरिमों को पकड़ा ही नहीं जाता, या तो वो कोई किसी को पैसे दे दिला के वो वैसे ही छूट जाते, अगर कोई सजा मिले भी तो क्या उनको उतनी सजा मिल सकती है जितनी उन्होंने दूसरों के साथ ज्यादती की। मिसाल के तौर पर एक मिसाल ले, हिटलर को देखें, हिटलर को देख ले, उसने कितने लाखों लोगों का कत्ल किया, इतने लोगों का खून उसके सर पे है, उसके बाद उसने खुदकुशी कर ली, एक गोली मार के खुद को खत्म कर लिया, तो क्या हुआ उसको? तो जो मौत मिली चंद सेकंड के अंदर उसने अपना खात्मा कर लिया। क्या ये फेयर है कि जितने लोगों का उसने खून किया उनकी जिंदगियां जैसे इफेक्ट हुई, वो जिस तरह से दुनिया से गए उसके बाद उनकी फैमिलीज ने जैसे सफर किया, उनके बच्चों ने जैसे सफर किया होगा, वो कोई हो सकता किसी के बच्चा अच्छा भला निकलना हो और उसके बाद वो कोई क्रिमिनल बन गया हो अपने बाप के ना होने की वजह से, कितनी औरतें बेवा हो गई, उनकी जिंदगियां खत्म हो गई, कितने बच्चे बेसहारा हो गए, यतीम हो गए। क्या ये इस चीज का बदल लगता है आपको कि एक बंदा गोली मार ले अपने आप को और बस वो तो बड़े आराम से छूट गया, इतने सारा जुल्म करके, इतने इंसानों को अजियत देके, खुद एक सेकंड की अजियत लेके गुजर गया, इज इट फेयर? ये कोई भी इंसान कहेगा ये फेयर नहीं है। इसका मतलब है एक तो कोई दिन होना चाहिए ना जहां पे ऐसा उसको सजा मिले कि जितने लाखों लोगों का उसने खून किया उसके मुताबिक उसको भी अजियत दी जानी चाहिए। दुनिया में तो ऐसी मिलनी नहीं सकती, क्योंकि कितनी दफा फांसी चढ़ाएंगे, एक दफा चढ़ा देंगे किसी को, उसके बाद क्या? उसके बाद तो तकलीफ का एहसास ही खत्म हो जाएगा, चाहे उसकी बॉडी को जो भी करे, तो इसका क्या बनेगा फिर? फिर इंसाफ कैसे हुआ? तो ये तो इसका मतलब दुनिया हर चीज यहां पे इंसाफ के ऊपर कायम है, हक के ऊपर कायम है। अल्लाह ताला ने फरमाया हक पे पैदा किया अल्लाह ने, सच्चाई पे, इंसाफ पे। तो ये तो इंसाफ ना हुआ, ये कैसा इंसाफ है फिर? ये ऐसी किसी दुनिया में तो हो सकता है जहां पे कोई खुदा ना हो, लेकिन जिस दुनिया का कोई बनाने वाला है और उसको संभालने वाला है और उसको देखने वाला है और उसको एहतमाम के साथ चलाने वाला रब मौजूद है, वहां पे ऐसी अंधेर नगरी नहीं हो सकती। जिसने इस सब चीज को इंसाफ के ऊपर पैदा किया, कोई आप देख रहे हैं सूरज को चांद का हक मार रहा हो, कोई एक सितारा दूसरे जिसे जाके उसको उधर किक करे और उसकी जगह खुद खड़ा हो जाए, और कोई मार धार लगी हुई हो ऊपर आसमानों पे, और उसके बाद जमीन के ऊपर आप देखे खूनखार दरिंदे भी हैं, लेकिन वो भी दूसरे के ऊपर कब अटैक करते हैं? जब उनको भूख लगी हो, अल्लाह ने उनकी जरूरत के लिए वो इंतजाम किया, ऐसे वो भी किसी को नहीं छेड़ते, जुल्म तो ये जानवर भी नहीं कर रहे। तो इंसान जब जुल्म करे तो क्या उसकी पकड़ नहीं होनी चाहिए? क्या उसको कोई पूछने वाला नहीं होना चाहिए? ये दुनिया जब अल्लाह ने हक पे पैदा किया है तो यहां पे क्या सबको ऐसे ही छोड़ दिया जाना चाहिए? क्या अल्लाह ताला से ये चीज एक्सपेक्ट की जा सकती है? और फिर आप देखें, ये तो आपको जो सजा जिसको होती है वो तो वो भी इतनी नहीं, लेकिन बाज दफा ऐसे लोग झूठ के और धोखे के खौल चढ़ाए होते हैं, लोग उनको अपना सेवियर समझते हैं, क्योंकि इतना झूठ बोलते हैं, इतना ज्यादा फ्रॉड होता है कि लोग उनको समझ ही नहीं पाते, लोगों को पता ही नहीं चलता कि इनके पीछे कैसे करीब फेसेस हैं, कैसे ये लोगों को धोखा दे रहे, कोई नहीं दुनिया में पता चलता। क्या उनकी हकीकत खुलनी नहीं चाहिए? बाज दफा लोग जादू टूनों से लोगों के घरों को बर्बाद कर देते हैं और खुद सारी जिंदगी कोई दुनिया की अदालत उनको कोई सजा नहीं देती, क्या उनकी पकड़ नहीं होनी चाहिए? जो आज बेगुनाहों का खून बहा रहे हैं, दुनिया में जगह जगह टॉर्चर किया जा रहा है, एक बंदा एक खुदकुश हमला करता है और उसके बाद कितने ही लोगों की जानें चली जाती हैं, क्या हुआ उसकी? तो एक गई, बाकी कितने सारे जो खून उसके सर पे, क्या इस पे कोई सुनवाई नहीं होनी चाहिए? आए दिन पता चलता है फलां जगह पे मैस ग्रेव्स मिल गई, पता ही नहीं कब मारा, कितना को मारा, हजारों लोगों की इज्तमाई कब्रें बना के छोड़ दिया, गड़े में डाला और मार दिया, और फिर उसके बाद कहते हैं फला हुकूमत के दौर में ये हुआ था, फला के दौर में, उसके बाद कौन पकड़ता है उनको? कोई पता चलता है कि किसी को पकड़ा इस पे? बस ये कह के खत्म कर देते हैं, हाँ फला के दौर में। अब वो ना हुकूमत रही, ना किसी को पकड़ा जाएगा, ना कोई सजा होती है। वो सारे जो दुनिया से चले गए, क्या उनके लिए इनके खून ऐसे ही चला गया? कई लोगों को उठा लिया जाता है और फिर उनका नामो निशान भी नहीं मिलता, उनके घर वाले दुहाइयां देते रहते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता, सारी जिंदगी पता ही नहीं चलता वो गए कहां, कौन उठा के ले गया, किधर चले गए, जिंदा है कि मुर्दा है। क्या उनके बारे में किसी को पूछ पड़ताल नहीं करनी चाहिए? वो जो लोग साजिशें करके दूसरों के घरों में आग लगाते हैं, ऐसे प्रोग्राम बनाते हैं कि दूसरे चैन से ना रह सके, हर वक्त तीले लगाने का उनको शौक होता है, तो क्या उनको कोई नहीं पूछना चाहिए किसी को? क्या उनको ऐसे ही चैन से रहना चाहिए और फिर वो दुनिया से ऐसे चले जाए? लेकिन कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि कोई मुकदमा अदालत में हुआ हो कि किसी ने कहा हो कि मेरा घर इसने तबाह कर दिया, इसने साजिशें की, इसने ऐसे किया। कोई ऐसा मुकदमा आपने आज तक लगे हुए भी नहीं देखा, सजा तो होना दूर की बात है। कई लोग दूसरों के बच्चों को गलत कामों में डाल के गलत रास्तों पर ले जाते जिससे उन बच्चों की जिंदगियां तबाह हो जाती हैं, मगर सारी जिंदगी वालदैन तो रोते रहते, कोई अदालत कभी उनको सजा नहीं देती। कभी को किसी के चेहरे पे तेजाब फेंक के उसको जीते जी मार देता है, उनको कोई नहीं पूछता। कभी कोई किसी को टॉर्चर करके हैंडीकैप बना देता है, कोई पूछने वाला नहीं। कोई किसी को अजियत दे दे के साइको बना देता है, कौन सी अदालत में ऐसे मुकदमे लगते? वो किसी बच्चे पे या कमजोर औरत पे जुल्म और ज्यादती कर रहे, ऐसे जुल्म करते हैं कि वो किसी काम के लायक नहीं रहते। इतने बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनके हकूक दूसरे मार रहे हैं, लेकिन वो नहीं अपना हक ले सकते क्योंकि वो कमजोर हैं, क्योंकि उनका कोई पूछने वाला नहीं है, वो बेबस हैं, उनके ऊपर कोई नहीं है। तो क्या ये सब ऐसे ही चलना चाहिए? फिर तो जो जुल्म करने वाला बड़ा अच्छा रह गया भाई, यहां पे भी जुल्म करे, दोगों के हक मारे, लूट कसूट के खा ले, बस ठीक है। और जो बेचारा मजलूम है वो इसी तरह पिस्तर है, उसकी किस्मत में है ही है। बेशुमार दास्तानी है जो हमें अपनी इर्द गिर्द भी मालूम है, हम रोज देखते भी हैं, हम खबरों में सुनते भी हैं, लेकिन इसके अलावा लाखों करोड़ों ऐसी हैं कि जिनका हमें नहीं पता, वो अल्लाह को ही सिर्फ पता है। तो क्या आप समझते हैं कि दुनिया में होने वाला ये सब कुछ जो हो रहा है, जो हमारे इर्द गिर्द है, ये सब बस एक दिन ऐसा होना चाहिए कि जैसा किसी बच्चे ने खेल खेला ना, टॉयज के साथ बच्चे खेलते हैं, कोई चीज बनाते हैं, वो ब्लॉक्स के साथ बनाते हैं, फिर उसके बाद उसको किक करते हैं, वो सारा टूट फूट जाता है। तो नाउजुबिल्ला अल्लाह ताला ने क्या आसमानों और जमीन को इस तरह बनाया कि अल्लाह ताला ने बनाया उसके बाद उसका एक दिन जी भर जाएगा, वो उठा के उनको फेंक देगा? अभी वो देख रहा है, तमाशा देख रहा है कि क्या बच्चा, नाउजुबिल्ला कि अल्लाह ताला के सामने ये कोई खेल हो रहा है कि भाई लोगों के ऊपर जुल्म और ज्यादती है, तो वो देखता जा रहा है, उसके बाद वो एक दिन इसको खत्म कर देगा जब उसका जी भर जाएगा। तो लोग अपनी मर्जियां करते जा रहे हैं, जैसे चाह रहे हैं जी रहे हैं, जैसे जो मर्जी जो चाह रहा है कर रहा है, बस ये कोई पूछने वाला ही नहीं है। किसी शायद मुल्क में तो ऐसा हो सकता है जिसमें कानून कमजोर हो, अल्लाह कमजोर नहीं है। एक दिन वो होगा जिस दिन जिसका हक मारा गया होगा वो अपने हक लेने के लिए खड़ा हो जाएगा। एक दिन वो होगा जो मजलूम बच्ची जो जमीन में जिंदा गाड़ दी गई वो उठेगी और उससे पूछा जाएगा। एक दिन वो होगा कि जिनके साथ ज्यादतियां की गई, जिनकी जमीनें जायदादें जुल्म के साथ हत्या ली गई, वो खड़े होंगे और अल्लाह के हजूर में फरियाद करेंगे। एक दिन यतीम बच्चा खड़ा हो जाएगा और वो बोलेगा। एक दिन कोई बहू खड़ी हो जाएगी और वो मुकदमा करेगी अपनी सास के खिलाफ, और एक दिन कोई सास खड़ी हो जाएगी और वो बहू की ज्यादतियों के ऊपर बोलेगी। तो इसको ये कोई अंधेर नगरी ना समझे, यहां पे इंसानों के हाथ बंधे हो सकते हैं, अल्लाह के हाथ बंधे हुए नहीं है। अगर वो खामोश है तो वो इसलिए कि उसने इस दुनिया को जजा सजा की जगह नहीं बनाया, उसने नतीजे का एक दिन रखा है, रिजल्ट का एक दिन रखा है, जिन दिन सबका रिजल्ट निकलना है। इसलिए जिसके ऊपर ज्यादती हो रही है वो ये ना सोचे कि हमेशा इसी तरह होगा और कभी कोई उसका सुनने वाला नहीं है, अल्लाह है जो देख रहा है। इसीलिए हर चीज रिकॉर्ड हो रही है, हर आंख जो उठ रही है उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, हर कान जो कुछ सुन रहा है उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, हर बोल जो बोला जा रहा है उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, हर चीज रिकॉर्ड हो रही है। इसीलिए तो हो रही है कि नतीजा निकलना है उसी की बेस पे। इसलिए आज कोई जुल्म करके ये ना सोचे कि वो भाग सकता है। वो हाँ दुनिया के कानूनों से भाग सकता है, कौन पूछेगा इसने धागे ताबीज किए, इसने जादू किए, इसने ऐसे किया, इसने इनके घर को तोड़ने के लिए ये आग लगाई, इसने ये ब्रेन वॉशिंग की दूसरों की, इसने ऐसे की। यहां पे ना कोई पूछे, ना किसी को हो सकता पता भी ना चले। कितने लोग यहां पे मुजरिम बैठे हुए, भेड़िए की, भेड़िए अंदर से और भेड़ की खाल में मासूम बने हुए, लेकिन अंदर से क्या है भेड़िए, कि मौका मिल जाए तो दूसरे का खून कर दे। ये दुनिया के इंसानों से तो छुप सकता है, अल्लाह से नहीं छुप सकता। उसकी नजर तो दिलों के अंदर तक के राजों पे है, उन बातों तक पे है। तो जब एक सेंसिटिव इंसान या एक इंसाफ पसंद इंसान भी ये हालात देख के तड़प जाता है, लोगों की दास्तानें सुन के तड़प जाता है, दुआ करता है या अल्लाह तू जालिम को पकड़ ले, अल्लाह तू मजलूम की मदद कर, तो वो रब जो सबसे ज्यादा इंसाफ पसंद है, क्या वो ऐसे ही छोड़ देगा कि जो जी चाहे करो। बस एक दिन जब मेरा जी भरेगा तो मैं वो बिसात जैसे वो होती है गेम होती है, उसको बंद करके लपेट दिया जाता है कभी ना दोबारा खोलने के लिए। जब इंसान की फितरत पुकारती है अंदर से, कोई काफिर को भी आप पूछे ना, एथिस्ट को भी पूछे, अंदर से फितरत पुकारती है, ये हमारे अंदर ना प्रोग्रामिंग की हुई है, फितरत अंदर से पुकारती है कि नहीं ये सही नहीं है, जरूर एक दिन होना चाहिए इसके लिए, जरूर एक दिन होना चाहिए कि जब साजिशें बेनकाब हो, जब पता चले हक क्या और बातिल क्या है। यहां पे हमें इस तरह से पागल बनाया जाता है, हमें पता चलना चाहिए मुजरिम कौन है और मजलूम कौन है, हक पे कौन है और ना हक कौन है, बुरा कौन है और भला कौन है। तो ये तभी खुल सकता है जब वो खबीर जो है वो सामने लेकर आए, वो सारे मामलात को खोले, सबके फैसले हों। इंसान की ये फितरत पुकारती है, इसीलिए उस रब ने फरमाया फमन यअमल मिसकला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिसकला ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रे के बराबर भी नेकी करोगे तो छुप नहीं सकती, वो भी देख लोगे, वो भी सामने आ जाएगी तुम्हारे, जर्रे के बराबर भलाई भी सामने आ जाएगी और बुराई भी। फिर उसने एक ऐसा जहान रखा इसके लिए, एक ऐसा यानी कंप्लीट एक डिफरेंट दुनिया रखी है उसने इसके लिए, जहां पे फिजिकल लॉज नहीं होंगे। याद रखें ये फिजिकल लॉज जो है ना ये खत्म हो जाएंगे, लॉज ऑफ द नेचर जो यहां पे कहते हैं। यहां पे कैसे लॉज है, यहां पे तो ये लॉ है ना कि भाई अगर किसी को बहुत ज्यादा टॉर्चर हो, किसी को बहुत ज्यादा यानी सजा ऐसी दी जाए तो क्या होता है, वो या तो बेहोश हो जाएगा, बेहोश से भी ज्यादा अगर कोई किसी को टॉर्चर किया जाए या सजा दी जाए, मिसाल के तौर पे कहीं फांसी दे दी जाए तो मर जाएगा। फिर उसके बाद क्या, 10 दफा तो नहीं मार सकते ना। और अगर किसी को ऐसी कोई सजा दी जाए, मारने की ना दी जाए, कोई और सजा दी जाए उसके उस जुर्म की वजह से, तो इंसान है जाहिर रही बात है, एक वक्त आता है कि वो उसकी सेंसेस ही खत्म हो जाती है, फिर उसको ना तकलीफ का एहसास रहता है और ना ही कुछ पता चलता है कि तकलीफ हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि बेहोश हो गया, बिल्कुल उसकी सेंसेस खत्म हो गई। तो अब ऐसे को आप कहां से सजा दे सकते हैं, दुनिया में कहां से फिरौन को आप सजा दे सकते हैं। इतने 70,000 बच्चों का तो उसने ज़िबा कर दिया, बाकी और जो जुल्म किए वो तो इसके अलावा है, ये तो मासूम बच्चों का, क्या वो मासूम बच्चे ना पूछेंगे उस दिन क्या हमें किस जुर्म की सजा मिली। तो यहां पे तो मिल ही नहीं सकती किसी को वो सजा जो कि कोई डिजर्व करता है। अव्वल तो यहां पे बेनकाब ही नहीं होते लोग ना, छुपे ही रहते हैं सारी जिंदगी, पर्दे डाले रखते हैं, कोई कोई होते हैं जो अदालतों तक पहुंचते हैं, ज्यादातर लोग हमारे जैसे इंसानों के अंदर ही ऐसे ऐसे हमने वो जुर्म किए होते हैं, लोगों के घरों को तबाह किया होता है या किसी के साथ जुल्म और ज्यादती कर रहे होते हैं, अपने घरों में कर रहे होते हैं, यहां पे कोई कभी देखने वाला ना हो वहां पे कर रहे होते हैं, लोगों की आंखों में धूल झोंक देते हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि ये इसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। ये फिजिकल लॉज जब नहीं होंगे ना तो वो ऐसा जहान है जहां पे फिर ये ना कोई मर सकेगा कि मौत आ जाए, जल जल के भी ना बेहोश होंगे, ना अपनी सेंसेस खोएंगे कि उसको पता ही ना चले कि मैं जल रहा हूं। ये खाल उतरेगी तो दूसरी चढ़ेगी, फिर उतरेगी तो दूसरी चढ़ेगी, ताकि तकलीफ का एहसास रहे। दाइमी अजाब इसीलिए तो होगा, दाइमी इसीलिए तो कहा गया है कि तकलीफ का एहसास खत्म ही नहीं होगा। और जिसने नेकी की उसको यहां पे क्या मिला? मिसाल के तौर पे कोई हक हलाल की कमाता है, मिसाल के तौर पे कोई किसके साथ भलाई करता है, उसके ऊपर उसको ताने भी मिलते हैं, लोग उसका बायकॉट भी करते हैं, लोग उसको जलील भी समझते हैं, उसको गरीब भी समझते हैं, उसको कुछ नहीं वैल्यू उसकी खानदान में, उसको बस वो हक हलाल की कमाने लगा हुआ। क्या उसको मिला जो अल्लाह के दीन को लेकर चलने लगा हुआ है और जगह जगह से ताने सुन रहा है, बातें सुन रहा है, फिर भी वो उसके दीन पर चलता जा रहा है, तो क्या उसको मिला? उसको तो खाम खाई फिर नेकी का एक बुखार चढ़ा हुआ है, वो भी छोड़े, क्या जरूरत है उसको? वो भी लूटना खसूटना शुरू कर दे। क्योंकि याद रखें, जब इंसान ये सोच लेना कि भाई कोई आखरत नहीं है, तो एकदम उसका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता है। कैसे? अगर ज्यूम कर लिया जाए कोई क्यामत नहीं है, तो क्या होगा उसके बाद? इंसान का तरीका जिंदगी, लाइफस्टाइल क्या बन जाएगा? इधर लूटो, उधर खसूटो, उसको मारो मरो, बस जो भी हासिल करना है ना वो यही करना है, क्योंकि यही तो एक जिंदगी है। यहां नहीं मिला तो फिर तो कुछ है ही नहीं, फिर उसके बाद तो मार ही जाना, मट्टी हो जाना। जो जिंदगी है बस यही तो जिंदगी है, ये दुनिया की जिंदगी जिंदगी है। यहां पे खा लिया तो वही खा लिया, यहां पी लिया तो पी लिया, यहां इंजॉय कर लिया तो इंजॉय कर लिया। इसीलिए तो कहते हैं जिन्होंने अपने माशाल्लाह से मुसलमान ही अब कुछ ऐसी बातें करने लगे कि कहते हैं कि बस जिंदगी तो एक दफा मिली है, जो चाहो करो, एंजॉय करो, खाओ पियो, मजा करो, एक दफा ही तो जिंदगी मिली। हालांकि मोमिन का तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है, वो तो कहता है कि जो जिंदगी है वो ये तो छोटी है, इसके बाद एक ना खत्म होने वाली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे लिए ये दुनिया बनाई गई है, लेकिन तुम आखरत के लिए बनाए गए हो, तुम तो आखरत के लिए हो। ये जिंदगी एक जिंदगी नहीं है, इसके बाद एक और जिंदगी है जो असल जिंदगी है। ये तो ख्वाब लगेगी, जब वहां पे उठेंगे ना लगेगा ओह ख्वाब देख रहे थे, क्या कुछ हो गया, वो सब तो एक दिन की जिंदगी लगेगी या दिन का कुछ हिस्सा, ये भी कोई जिंदगी हुई? और ये कहते हैं यहीं पे एंजॉय कर लो। यानी अब चाहे मां बाप की नाफरमानी करो, चाहे किसी के साथ बुरा सलूक करो, चाहे मारो, चाहे कुछ करो, लेकिन तुमने बस इस जिंदगी को अपना बेस्ट बनाना है। कोई ना किसी की परवाह करो, रिश्तों को तोड़ते तोड़ो, जज्बात को तोड़ते तोड़ो, किसी के साथ बुरा करते होता रहे, हमें तो अपनी जिंदगी अच्छी बनानी, क्योंकि ये एक ही दफा तो मिली है। जब इंसान कयामत को रिजेक्ट कर देता है ना, तो फिर तो उसकी जिंदगी ऐसे हो जाती है शुतरे बेमुहार की तरह, जिसकी कोई लिमिट्स नहीं है, जिसका कोई वो बांधने वाला नहीं है जिसको। तो इसी चीज का जवाब दिया गया, जो लोग ये समझते हैं, जो लोग जिन लोगों का ये कॉन्सेप्ट है ना, इतना बड़ा आसमान बस यूं ही बना दिया, इतनी बड़ी जमीन बस यूं ही फैला दी, इतने ब्रिलियंट ब्रेन्स बस फॉर नथिंग पैदा कर दी अल्लाह ताला ने, इसके बाद ना उनको पूछा जाएगा ना हिसाब होगा, तो क्या ये अल्लाह ताला ने खेल कूद के लिए फिर बना दिया था? आप $10 भी बच्चे को देती हैं ना, उसके बाद पूछती हैं कहां खर्च किए, हाँ पूछती हैं कहां खर्च किए, किधर रखे, क्या किया, क्या इसे खरीदा, जेब खर्च देते हैं हस्बैंड के, भाई कोई अकाउंटिंग वो भी करते होंगे कि भाई क्या आपने किधर खर्च किया। रब ने इतनी नेमतें ली हैं जिनका गिनना भी महाल, गिन नहीं सकते, वो क्या नहीं पूछेगा? तो उसने खेलने वाले के तरीके की तरह पे ये नहीं पैदा किया। अगर आसमान और जमीन को गौर करो तो वाकई जो इसके अंदर कोऑर्डिनेशन है, जो इसके अंदर हार्मनी है, जो इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन है, ये बता रही है कि ऐसे ही रब ने नहीं पैदा किया, वो तो इतना हकीम और अलीम है, उसने इसको बामकसद पैदा किया। उससे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि वो सब कुछ पैदा करके उससे गाफिल हो जाए, अब वो कहीं और मगन हो गया या कुछ और काम में लग गया है, बस उसने अब ये बना के इस तरह ही छोड़ दिया है। अब वो किसी नाउज़ुबिल्ला किसी बेजान बुत की तरह नहीं है कि बस देखता रहे और जुल्म हो रहा है और बस वो कहे कि ठीक है होता रहे, बस ऐसा नहीं होने वाला। यहां तो एक एक शख्स, एक एक फर्द जवाबदेह है لیکن دنیا میں اکثریت اس بات سے غافل ہے، اکثریت، لیکن اکثرہم لا یعلمون، اکثر ان میں سے جانتے ہی نہیں اس بات کو، یہ کیوں پیدا کیا گیا، یہ دنیا کمرہ امتحان ہے، اس چیز کو ہی بھول گئے ہیں. امتحان ختم ہونے پہ ریزلٹ نکلے گا، اگر امتحان کے بعد کوئی ریزلٹ ہی نہ نکلے تو وہ کون سا امتحان ہے؟ اس کے اگر یہ ہونا ہی نہیں تھا، قیامت ہی نہیں آنی تھی، تو پھر تو نہ اس قرآن کی ضرورت ہے، نہ نبیوں کی ضرورت تھی، کیوں آئے؟ انہوں نے اپنی زندگیاں بھی مشکل میں ڈال لی ہیں، لوگوں نے ساری زندگیاں اپنی لوگوں کی خیر خائی میں لگا دی، لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے وہ خطبے دیتے رہے، اتنا لوگوں کو کنوینس کرتے رہے، اتنی انہوں نے اپنی تکلیفیں اٹھائیں زندگی میں، کیوں اٹھائیں؟ آخر اس کا کوئی ریزلٹ ہی نہیں نکلنا تھا. ہم یہ جو سارا پڑھ رہے ہیں، پھر یہ تو سب کچھ بے مقصد ہو جاتا ہے، ایک کھیل بن جاتا ہے، تماشا بن جاتا ہے. اگر یہ اگر واقعی قیامت نہیں ہے تو یہ دن ہے، اور اس کے لیے عقل آپ کی بتاتی ہے کہ وہ دن آنا ہے، ایک دن ہونا چاہیے. تو جب ہم یہ یقین کر لیتے ہیں کہ ایک دن ہے، تو تبھی انسان کو پھر یہ فکر ہوتی ہے کہ میں کیا عمل کر رہی ہوں، میرا تو حساب کتاب ہونا ہے. پھر ہی انسان کو پریشانی ہونے لگتی ہے، پھر ہی وہ اپنے ہر ہر عمل کو چیک کرنے لگتا ہے، نہیں یہاں پہ رونگ نہ ہو جائے، یہاں پہ یہ نہ ہو جائے، وہاں پہ یہ نہ ہو جائے، کیونکہ وہ تب جانتا ہے اے اس کے اوپر میرا رب پوچھے گا مجھے، ریزلٹ نکلے گا، امتحان ہو رہا ہے. یہ دنیا میں تو نمبر دینے والے، چیک کرنے والے، کہیں کوئی غلطی کر سکتے ہیں، کوئی کوئی زیادہ نمبر دے سکتے ہیں، کوئی آپ کی غلطی نہیں پکڑی گئی، یا ہو سکتا ہے کوئی ایکسٹرا نمبر آپ کے کٹ گئے ہوں، لیکن اللہ کے فرشتے تو ایکسٹرا ڈاٹ بھی نہیں لگاتے، کوئی گریس مارکس نہیں دیتے کہ چلو اس کی بچت ہو جائے گی، نہیں، وہاں پہ کیا معاملہ پھر ہوگا. تو اس لیے اس کو کھلنڈرے کا کھیل نہ سمجھو، اس کو یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بنا دیا ہے، اس کو پر غور و فکر کرو. یہ دلیل ہے اس بات کی، یہ آسمان اور زمین کا ہونا اس بات کی دلیل ہے، اس کا اس طرح سے چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ ایک رب نے اس کو بنایا کسی مقصد کے ساتھ، اور وہ ایک دن جب اس کو، یہ دن کا علم اسی کو ہے، وہ دن ایسا ہوگا جب وہ سب کچھ سمیٹ لے گا اور پھر اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور سوال پوچھے گا. اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں بھی فرمایا نا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا یہ تم سوچتے ہو ہم نے تمہیں بیکار ہی پیدا کر دی، ایسے ہی پیدا کر دیا. دیکھیں نا، ایک تو یہ ہو سکتا ہے نا کانسیپٹ کہ انسان یہ سوچے، چلو ایزیوم کریں کہ ایک یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں آنی قیامت، چلو جی نہیں آنی، پھر آپ کو یہ سب چیزیں غور کریں، ایک ایک بات پہ جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے، ایک ایک چیز آپ کو بیکار لگے گی، آپ کو لگے گا کہ یہ سب خام خواہ پھر کوئی نیکی کر رہا ہے تو وہ بھی ایسے ہی بیکار ہی کر رہا ہے، اس کو کیا ملے گا نیکی کر کے بےچارے کو، اور جو برائی کر رہا ہے وہ تو پھر اچھا ہی رہ گیا. اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں، ایک دن ہو جس دن سب کے فیصلے ہوں، پتہ تو چلے ذرا برے کو کرنے والے کو، اب پتہ تو چلے کہ اس نے جو برا کیا اور اس کی کیا سزا ملے گی، جو اس نے لوگوں کو تکلیف دی، انسانوں کو یا اور کسی کو، یا اللہ کے حق میں کمی کی، تو اس کو اس کا پتہ تو چلنا چاہیے، اس کو سزا تو ملنی چاہیے، اور جو بیچارہ سمٹ کے چلتا رہا زندگی بھر، اس کو بھی کچھ ملنا چاہیے. تو آپ کو ان میں سے زیادہ انصاف والی کون سی بات لگتی ہے؟ زیادہ انصاف والی کس میں انصاف زیادہ لگتا ہے؟ یہ دوسری بات میں نا. تو پھر اللہ تعالیٰ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، انصاف کرنا یا بے انصافی؟ اللہ تعالیٰ سے تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ انصاف کرنے والا ہے، سب سے زیادہ انصاف کرنے والا ہے. تو جب اس نے انصاف کرنا ہے، تو اس کے انصاف کرنے کے لیے تو یہ زندگی کافی ہی نہیں ہے، یہ دنیا کی زندگی نہیں کافی، یہ 60, 70, 80, 100 سال یہ کافی نہیں ہے، نامکمل ہے، یہ ناقص ہے. تو اس لیے یہاں پہ وہ انصاف ہو ہی نہیں سکتا. اس وجہ سے ایک اس نے دن رکھا ہے کہ جس دن انصاف ہوگا اور حق کے بیسس پہ فیصلے ہوں گے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں جو اس نے نظام رکھا ہے وہ پتہ چل رہا ہے، سب اس چیز کی دلیل دے رہا ہے کہ جو یہ سب کچھ چل رہا ہے، ایک دن اس کو چلانے والا इसको खत्म भी करेगा। उसने कोई मकसद रखा है इसको सारा चलाने का, कोई टेस्ट रखा है, कोई इसके अंदर से उसने कुछ एक्सट्रैक्ट करना है, फिर उसके बाद इनमें से सिलेक्शन करनी है कि कौन उसकी जन्नत में जाने के काबिल है और कौन नहीं है काबिल, कौन है कि जो ये डिजर्व करते हैं कि उनको इनाम दिया जाए और कौन है जो सजा के मुस्ताहिक है। तो हम जब देखते हैं आसमान और जमीन को, बेशक हमें अल्लाह ताला की याद तो आती है, लेकिन क्या कभी आपने इस नजर से आसमान और जमीन को देखा? रब्बना मा खलकता हादा बातिला, ऐ अल्लाह तूने इसको बातिल नहीं पैदा किया, ऐ अल्लाह तूने इसको किसी मकसद से पैदा किया, तूने इसलिए पैदा किया इसको कि हमारा इम्तिहान ले ले, कि हम इसमें रहें और फिर उसके बाद जो जो हम अमल करें उसका बाद इसका हिसाब किताब दे। इस तरह से तो हम नहीं कभी सोचते ना, जबकि अल्लाह ताला ने तो यह फरमाया कि उसने उसको इस मकसद के लिए पैदा किया। ऐसे ही देखते हैं कि भाई आसमान को देखा, अच्छा चलो अल्लाह ने पैदा किया, बहुत अच्छी बात है ये भी, अल्लाह का जिक्र करना, उसको देख के अल्लाह को याद करना, लेकिन कभी इस नजर से भी देखा करें, ये अल्लाह ने ऐसे ही तो नहीं पैदा कर दिया, कोई मकसद है और वो मकसद क्या है, तब आपको पता चलेगा अगर आप गौर करेंगे। यही बताया ना कि अक्सर लोग इल्म नहीं रखते, अक्सर लोग अकल ही नहीं रखते, अक्सर लोग गौर व फिक्र ही नहीं करते, लेकिन अगर आप गौर व फिक्र करेंगे तो आखरत की जिंदगी आपको इतनी यकीनी नजर आएगी, इतनी लाजमी नजर आएगी, क्योंकि उसको निकाल दें तो ये दुनिया की जिंदगी बेकार है, जस्ट वेस्ट है, जस्ट एक गेम है, फिर तो ये तो ये कुछ भी नहीं है, ऐसे ही जैसे बच्चों का खेल होता है इस तरह से है। तो ये बहुत जबरदस्त आयतें हैं आखरत की दलील के बारे में। आखरत ना हो इस दुनिया के वजूद का कोई रीजन समझ में ही नहीं आएगा, कोई रीजन नहीं समझ आता फिर इसके चलने का, यहाँ पे जो कुछ हो रहा है इसके ऊपर, जो कोई किसी की पकड़ नहीं हो रही, किसी का कुछ नहीं हो रहा, इसकी कोई रीजन समझ नहीं आती, क्यों क्यों नहीं पकड़ हो रही, और इसको क्यों, इसकी भलाई का किसी को पता ही नहीं चला, इसको क्यों नहीं कुछ अच्छा मिल रहा है यहाँ पे। अक्सर लोग ये सवाल भी करते हैं ना, अच्छा वो इतना जुल्म करता है, वो फिर अगर अल्लाह है तो फिर उसकी क्यों नहीं पकड़ होती। अल्लाह तो है, लेकिन उसने कब कहा कि यहीं पे सारी पकड़ हो जाएगी, पार्शली यहाँ पे लोगों को कभी कभार पार्शली सजा या जजा मिल जाती है, लेकिन परमानेंट नहीं। परमानेंट के लिए उसने दिन जब रखा हुआ है तो फिर वो क्या परमानेंट नहीं पकड़, उसने कहा ही नहीं कि वो परमानेंट, अगर देखे वो इस तरह से पकड़ने लगता जैसे हम चाहते हैं तो क्या होता, इधर कोई आंख हराम को देखती उधर अंधी हो जाती, उधर कान कुछ गलत सुनते उधर बहरे हो जाते, उधर हाथ किसी की तरफ ज्यादती के लिए बढ़ता उधर वो हाथ शल हो जाता, फिर तो कोई इम्तिहान ही ना रहता, क्या इम्तिहान था फिर इसमें, सबको पता चल जाता कि क्या हक है ना हक है और क्या ये हो रहा है। तो अल्लाह ताला ने इम्तिहान के लिए आजादी दी जाती है ना, जो मर्जी करो जो मर्जी लिखो इस पर्चे में। तो अगर किसी के अंदर अकल हो तो आसमान और जमीन और इनके अंदर जो मखलूकात पैदा की हैं सब इस हकीकत पे दलील देती हैं कि आखरत है, क्योंकि जिस जात ने इतनी बड़ी कायनात को वजूद दिया वो यकीनन इस बात पे कादिर है कि इसको खत्म करके दोबारा भी पैदा कर सकता है, और वो यकीनन इस बात पे कादिर है कि जजा और सजा दे। इसकी हिकमत ये है इसको पैदा करने की कि इसको इम्तिहान की जगह बनाया, और फिर इम्तिहान के बाद ही रिजल्ट निकलता है, साथ साथ ही नहीं कि इधर अभी कोई लिखे उधर ही साथ क्रॉस करने शुरू हो जाए, उधर ही उसके सर पे खड़े होके इम्तिहान की वो शीट्स में लिख रहा है। कभी ऐसा हुआ आपके साथ इम्तिहान की शीटों में कोई लिख रहा है और साथ ही एग्जामिनर साथ ही उसकी चेकिंग भी शुरू कर दे? ऐसे तो नहीं होता ना। तो यहां से जो नेक और बद होंगे उनका भी अंजाम दिखाना लाजिम है, और ये अल्लाह ताला की शान से बईद है कि वो किसी को इस तरह से ही छोड़ दे और नेक को नेकी का अजर ना दे और बद को उसकी बुराई का ना सजा दे। तो ये सारी कायनात जो है ना, सारी मखलूकात इसमें इंसान को अल्लाह की फिर इताअत का एक सबक दे रही है कि देखो यहाँ ये सब कुछ खत्म हो जाना है, सब कुछ खत्म हो जाना है और तुम्हें अल्लाह के आगे खड़े होना है। अल्लाह ने ऐसे ही तो नहीं पैदा करती, इतना प्यारा आसमान बनाया, ऐसी प्यारी जमीन बनाई, इसमें ऐसी ऐसी चीजें पैदा की, ऐसी ऐसी चीजें तुम्हारे लिए पैदा की हैं, तो ऐसे ही तो नहीं कर दी, वो और तो करो। जो अल्लाह ये बना सकता है वो क्या तुम्हें दोबारा ना खड़ा करेगा। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।